Vicente.
डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात ग्रुप पांच। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, तो कितने पद्म जमा किए हैं? अनगिनत है, क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा नहीं होगा, कर्म वहां भी होंगे, लेकिन कैसे कर्म होंगे? अकर्म होंगे, क्योंकि वहां के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। तो यहाँ है करने का समय और वहां है खाने का समय, तो इतना अटेंशन रहता है। कितने जन्मों के लिए जमा करना है? किसी ने कहा 84। जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती? क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि अनेक बार किया है, क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता ही है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। भविष्य में भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है ही। सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। तो बाबा कह रहे कि अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो, क्यों? क्योंकि हर कदम में पद्म की कमाई जमा हो रही है। तो कितने कदम पद्म जमा किए? अनगिनत, क्योंकि जमा करने का समय अब है। जो कुछ भरना है वो अभी भरना है। सतयुग में जमा नहीं होगा, कर्म वहां भी होंगे, परंतु वहां के कर्म अकर्म होंगे। अकर्म, विकर्म और सुकर्म। बाबा ऐसे तीन प्रकार के कर्म कहते हैं। संगम युग पर जो श्रीमत अनुसार याद में किए जाने वाले कर्म है, वो सभी सुकर्म है, श्रेष्ठ कर्म, महान कर्म। विश्व कल्याण की भावना जिसमें है वो महान कर्म, निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म, वो सभी महान कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। विकर्म जो विपरीत बुद्धि है, जो रावण की मत पर किए जाने वाले कर्म है, वो सभी विकर्म है। तो कर्म, अकर्म और विकर्म, कर्म या सुकर्म। भक्ति में और तीन प्रकार के कर्म का आज कहते हैं। एक है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमान कर्म। संचित अर्थात जो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म है, जो जमा है। हर कर्म का फल है ही, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कर्ता को नहीं भोगना पड़ता। ऐसा हर वो कर्म जिसमें मन की सम्मति से जो किया हुआ कर्म है। वैसे तो आग की पलखे बंद करना वो भी कर्म है, तो क्या इसका भी फल है? ये किया, जो भी कर्म करेंगे उसका फल है। तो आग की पलखे बंद करना कुछ है इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी शरीर में बहुत कुछ हो रहा है, वो भी कर्म ही है। परंतु वह कर्म जो सम्मति से किया जाता है मन की, उसका फल भोगना ही पड़ता है, फलेच्छा। इसके लिए फलेच्छा से रहित जो कर्म है उसको अकर्म कहा है गीता में। तो एक है संचित कर्म, संचित अर्थात जो पूर्व जन्म में किया हुआ है वह कर्म। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म अर्थात जो पूर्व जन्म में किया है परंतु जिसका फल अभी मिल रहा है, किया तो पहले था, अभी ये दूसरी बात है कि वो अगर कोई अनजाने में कोई पाप करता है तो क्या उसका भी फल है? अनजाने में भी अगर कोई पाप करता है, अगर कोई नियम बना है परंतु उस नियम का ज्ञान नहीं है और कोई कर्म करता है, तो क्या वो दंड से छूट जाता है? नहीं छूटता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन, लेफ्ट साइड से चलना है, राइट साइड से चलना है, रास्ते की बात है। अगर किसी को पता नहीं है कि यहाँ से नहीं चलना है, वहां से चलना था, राइट साइड से चल रहा है और पुलिस उसको पकड़ता है, तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, मुझे यहाँ के नियम पता नहीं, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ पर गाड़ी चलानी आती है, तो यहाँ आया और राइट साइड से गाड़ी चला रहा है, पुलिस ने पकड़ा, तो वो अगर कहे कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे ज्ञान ही नहीं था, तो मेरा क्या अपराध है? परंतु नियमों का अज्ञान दंड से व्यक्ति को दंड का जो परिणाम है उससे वो मुक्त नहीं हो सकता है उससे। तो ऐसे कर्म जो अज्ञान में किए गए हैं उनका भी फल भोगना है, ऐसे कर्म जो मन की सम्मति से किए गए हैं उनका भी परिणाम है, पर कुछ कर्म जैसे आपकी पलके बंद करना, इसका कोई परिणाम नहीं है, न्यूट्रल एक रीति से। तो और तीसरा कर्म है क्रियमान, जो अभी किए जाते हैं। इनवॉलेंट्री ये कुछ शरीर की जो क्रिया है उनका कोई परिणाम नहीं है, हाँ, जो कि इनवॉलेंट्री है, जिसे दिल धड़क रहा है वो भी कर्म है, उसका क्या परिणाम है? पचन हो रहा है, इनवॉलेंट्री, अपने आप हो रहा है, हम नहीं कर रहे, श्वास चल रहा है, इनवॉल, वो भी कर्म ही है। इस धरती पर जो कुछ भी किया जा रहा हो रहा है वो कर्म है, और नियम ऐसा है कि कर्म का फल है ही, पर ये कुछ शरीर से संबंधित ऐसे कुछ कर्म है जिनका कोई परिणाम नहीं है, माना जो कि भोगना पड़े उसको उस रीति से, हाँ वो दूसरी बात है, वो नियमों की बात है, यहाँ बात हो रही है फल की। तो चाहे अज्ञान में किए हुए कर्म है तो उनका भी फल है। तो जो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप है, अब बाबा ने यह भी कहा है कि तुमने जो बाप की ग्लानि की उसे सर्वव्यापी कहा, कुछ दिन पहले मुरलियों में था ना, जिन्होंने बाप को सर्वव्यापी कहा या जो बाप स्वयं को ईश्वर समझते, बाप उनका हिसाब लेगा, कुछ दिन था ना, 3-4 दिन पहले मुरलियों में था, उनका दंड भी कम नहीं है, मुरली में था। तो हमने जो सर्वव्यापी कहा वो तो बड़ा प्यार से कहा उसे, हम तो इतना वो अंदर समाया है था कि सब जगह वही वही है, पर बाबा ने कहा जो भी कर्म देहभान में किए गए हैं वो सभी पाप की श्रेणी में आ रहे हैं। तो एक है संचित कर्म जो हमने पहले किए हैं परंतु जिनका जो किए हुए है, दूसरे है प्रारब्ध, उनका फल अभी मिल रहा है, और तीसरे कर्म शास्त्र में कहा है क्रियमान कर्म, जो अभी हम कर रहे हैं और जिसका फल फिर आगे मिलेगा। देवताओं के जो कर्म है वो कैसे है? अकर्म है। क्यों? कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा है वहां पर, आत्माभिमानी स्थिति में किए जाने वाले कर्म है, वहां देहभान नहीं है। रादर यहाँ के जो किए हुए श्रेष्ठ कर्म है उसका ही वो फल है, तो फल का भी फल नहीं होगा, वो अकर्म ही है वहां पर। तो देवताओं के कर्म अकर्म, देहभान जब द्वापर से चालू हुआ तब से जो कर्म किए हैं थोड़े थोड़े भी कर्म होते 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 बढ़ते गए। एक है कुकर्म, वो क्या है? काम से संबंधित जो कर्म है, काम विकार, दुष्कर्म जिसे कहा जाता है, एक है दुष्कर्म या कुकर्म, वो काम से संबंधित विकर्म है। विकर्म, कुकर्म, दुष्कर्म, और अभी संगम पर कौन से कर्म है? श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म, महान कर्म, ऐसे कर्म कि जिसका अभी अभी फल मिलता है, कौन सा? प्रत्यक्ष फल, खुशी, और उसका एक प्रत्यक्ष फल सतयुग में भी, उसे भी प्रत्यक्ष फल ही कहेंगे, संतुष्टता, कल था ना, जो संपन्न आत्माएं है वो संतुष्ट है स्लोगन। तो कितने जन्मों के लिए जमा करना है? जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो, भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। अभी जो कर्म कर रहे हैं और उसका जो फल मिल रहा है वो अति श्रेष्ठ है, क्योंकि सेवा की तुरंत खुशी, सेवा की और दुआएं, सेवा की और संतुष्टता, सेवा की और ये संतुष्टता कि हम श्रीमत पर चल रहे जैसे उसने कहा वैसे हम कर रहे, ये संतोष है अंदर से। याद सेवा करते हुए याद में भी है, तो बहुत सारी चीजें हो रही है फिर, तो ये सब प्रत्यक्ष फल है, डायरेक्ट रिजल्ट। अभी सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्म फल मिलने का साधन है, सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं, निरंतर ये स्मरण में रखना है कि अभी करना है श्रेष्ठ, कल नहीं, आज नहीं, अभी। किसे कहेंगे श्रेष्ठ कर्म? जो याद की याद में किए जाने वाले सारे ही कर्म श्रेष्ठ है, स्वार्थ भावना से रहित जो है वो सभी से श्रेष्ठ कर्म है, निष्काम भाव से किए जाने वाले सभी कर्म श्रेष्ठ कर्म है, निमित्त भाव से किए जाने वाले सभी कर्म श्रेष्ठ कर्म, ट्रस्टी बनकर किए जाने वाले सभी कर्म श्रेष्ठ कर्म है, विश्व कल्याण की भावना से किए जाने वाले सभी कर्म श्रेष्ठ कर्म है, शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए किए जाने वाले सभी कर्म श्रेष्ठ कर्म है, कर्म कॉन्शियस न होकर किए जाने वाले सभी कर्म श्रेष्ठ है, अशरीरी अवस्था में किए जाने वाले सभी कर्म श्रेष्ठ है, स्वमान में रहकर किए जाने वाले सभी कर्म श्रेष्ठ है, नींद और योग में अंतर है। क्या अंतर है? नींद में भी आत्मा डिटैच है थोड़ी बहुत शरीर से, योग में भी डिटैच, चलो योग अगर लग गया तो है, परंतु योग और नींद में अंतर है। योग में आत्मा जागृत है, यहाँ मूर्छित है, बस ये अंतर है, बाकी वो भी अशरीरी बनी समझ लो उसको, यहाँ पर शक्तियां भरती है, वहाँ न्यूट्रल है, वहाँ स्वप्न दिखते हैं, वहाँ शरीर को शक्ति मिल जाएगी, भले थका हुआ कोई थका मांदा है तो सो गया तो रिफ्रेश हो जाएगा उठकर, परंतु मेन चीज है कि वो मूर्छी मूर्छा की अवस्था है, ये जागृत अवस्था है, वहाँ विकर्म न्यूट्रल, कुछ नहीं है वहाँ, न्यूट्रल है, वहाँ पर पाप हो सकते हैं, संकल्पों के पाप, स्वप्न, विकारी स्वप्न, विकारी स्वप्न हो सकते हैं। वो भी आ सकते हैं, पर उनका कितना स्वप्न तो वही है जो हम दिन भर या जन्म जन्मांतर का जमा हुआ है, वो किसी भी कॉम्बिनेशन से बाहर आ रहा है। तो बाबा कहते हैं कि क्या याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं, श्रेष्ठ कर्म अब करना है। और श्रेष्ठ कर्म किसको कहेंगे? श्रीमत पर किए हुए जो कर्म है,
मुरली के आधार
पर, श्रीमत पर जो बातें आई है, बस वो सबसे फाइनल स्टेटमेंट है। जो कर्म श्रीमत पर किए गए हैं वो सभी श्रेष्ठ है, फिर चाहे कुछ भी हो। कर्म फल की इच्छा से, फलेच्छा जिसको कहते, कर्म फल की जो इच्छा से रहित, इच्छा नहीं है उसकी, कर्म कर रहे हैं परंतु कर्म करते समय ये ख्याल है कि मेरा बहुत नाम हो जाए, महिमा हो जाए, कोई भी इस तरह की इच्छाएं हैं, तो वो कर्म इतने महान नहीं हो पाते, बहुत निर्माण चित्त से जो किए जाने वाले कर्म है, ह्यूमिलिटी से, निर्माणता से किए जाने वाले जो कर्म है वो महान है, दूसरों को सुख देने वाले कर्म, हितकारी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, शास्त्रों में गायन है, जो बहुजन हिताय, कई लोगों का जिसमें हित हो जाए, बहुजन सुखाय, जिसमें बहुतों का सुख प्राप्त हो जाए, ऐसे कर्म, कर्म करे और जिसका कोई वर्णन ना हो, वो जो कर्म है, जैसे मम्मा के लिए कहते हैं ना, मम्मा आई 1.5 महीना सेवा करके बैंगलोर से, उसके साथ एक भाई भी था, मम्मा को पूछा कैसी रही सेवा, मम्मा ने कहा अच्छी रही, बस कोई वर्णन नहीं, इतना ही। कैसी रही? बड़ी बड़ी सेवाएं करके आई। कैसी रही? अच्छी रही। वो तो दूसरा भाई था, उससे पूछा क्या 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 हुआ, तो उसने बताया ये भी हुआ वो भी हुआ, ऐसे भी किया वैसे भी किया, ये भी किया वो भी किया, इधर भी गए उधर भी गए, इसको संदेश सुना, ये ज्ञान में आया, ये निकला वहां से, वहां से वो निकला, ये ऐसी बड़ी बड़ी सेवा है, पर उसका कोई वर्णन ही नहीं। बस वो चला रहा है, तो जमा हो गया वहां पर। जैसे उसका वर्णन किया जाता है, वर्णन करते समय ही वो मॉडिफाई होता है कर्म, जितना किया उससे हम ज्यादा बताते हैं। ये मनुष्य की एक मूलभूत कमजोरी है कि जब हम वर्णन करने जाते दो चीजें होती है, एक तो जो सत्य है उसको दबाते हैं थोड़ा सा, या जो सत्य है उसको अतिशयोक्ति के साथ उसे बताते हैं। दिया ज्ञान 10 लोगों को, कहेंगे 20 लोगों को, कई लोग कितने आए थे, आए थे 10,000, 20,000 तक आए होंगे 15-20,000 तो होंगे वर्णन जब किया जाता है, ये एक महात्मा गांधी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जब वो पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए तो वो बहुत डरते थे भाषण देने से, चुप रहते थे, परंतु उन्होंने लिखा है कि ये जो मेरा चुप रहना था ये मेरे लिए वरदान था। द टेंडेंसी टू स्पीक, टू मॉडिफाई और सप्रेस द ट्रूथ इज अ नेचुरल प्रोपेंसिटी ऑफ मैन एंड साइलेंस इज नेसेसरी। तो वो कहते हैं वॉटरी ऑफ ट्रूथ, जो सत्य का अनुगामी है उसके लिए मौन बहुत जरूरी है। तो ये मेरा जो बोलना नहीं आता था वो तो अच्छा ही था कि मैं नहीं बोल सकता था, क्योंकि ज्यादा बोलने से जो सत्य है उसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसमें अपना थोड़ा डाल देते हैं, मिर्च मसाला जो है उससे और कुछ कुछ उसमें डाल देते। तो सेवाओं का वर्णन करना, सेवाओं का समाचार देना, ये बहुत अच्छा कार्य है, सब जगह है, परंतु वो कार्य उतना ही निमित्त भाव से अगर किया जाए तो, नहीं तो वो सेवाओं का समाचार नहीं होता है, वो मैं का समाचार होता है। हमारे सेवाओं के समाचार किसके समाचार है? मैं के समाचार, मैंने क्या क्या किया वो जो रिपोर्ट करना है उसमें इतना निमित्त, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है भले हमने बहुत ही निस्वार्थ भाव से किया और हमारे अंदर कोई अहम भी नहीं है उस सेवा का, परंतु वो बताते समय कुछ ना कुछ निकल जाता है कि जिससे शायद ऐसा किसी को लगे कि देखो कितना अहंकार है इसमें। संगम पर जो भी कार्य हो रहे हैं परमात्मा शक्तियों के द्वारा हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ परमात्मा शक्तियों के द्वारा हो रहे हैं। महाभारत में एक दृश्य है, महाभारत का युद्ध हो गया, पांचों पांडव द्रौपदी श्री कृष्ण वो बर्बरीक के पास आते हैं, बर्बरीक होता है ना वो भीम का पुत्र बर्बरीक, तो उसका केवल सिर लटका हुआ रहता है, उसका धड़ तो पहले ही अलग हो चुका होता है। तो पांडव उससे पूछते हैं कि बताओ हम में से सबसे अच्छा युद्ध किसने किया, हम आपको क्या लगता है कि हम में से सबसे बहादुर कौन है, क्योंकि जैसे संजय को दृष्टि प्राप्त थी वैसे उसे भी प्राप्त थी सब कुछ देखने की युद्ध, तो हम में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो बर्बरीक हंसने लगता है जोर जोर से, तो बोलते अरे तुम हंस क्यों रहे हो, तो बोलते मुझे तो हंसी आ रही है तुम लोगों पर। तो कृष्ण उसको कहता है अरे प्लीज उसको मत बताना क्यों हंस रहे हो तुम, तो बोलते नहीं हमको बताओ तुम क्यों हंस रहे हो, हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन योद्धा है। तो बोलता है मैंने तो देखा केवल एक सुदर्शन चक्र ही सबका वध कर रहा था, वो तुम बाण तुमने मारा पर कर्ण को वो सुदर्शन चक्र नहीं मारा, बाण तुमने मारा पर वो भीष्म जो गिरा उसको सुदर्शन चक्र नहीं गिराया, बाण तुमने मारा पर वो जो दुर्योधन का वध शकुनी जो मरा, वो जितने भी योद्धा मर रहे थे केवल एक सुदर्शन चक्र ही घूम रहा था और वही सबको मार रहा था, तो तुम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, जो तुम समझ रहे हो कि हमने ये इसको मारा उसको मारा, जो अर्जुन बोलता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, तो करने वाला तो वो एक ही है। तो श्रेष्ठ कर्म वो है एकदम जिसमें निर्माणता हो। किसको टच किया? मान को, माया को, तो ऐसे हमारे कर्म हो कि जिसमें मैंपन से रहित जो कर्म है, क्योंकि अगर हमने वहां पर कुछ स्वीकार कर लिया स्तुति, तो जब निंदा होगी उसका भी हम पर बहुत ज्यादा परिणाम पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। स्थिति को अच्छे लड़ोल रखना अर्थात निंदा और स्तुति। निंदा तो ठीक है, निंदा व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाता है, परंतु स्तुति व्यक्ति को बाह्यमुखी बनाता है। स्तुति व्यक्ति में अहंकार लाता है, उसको ये लगने लगता है कि मैं हूं कुछ, मैं भी कुछ हूं मेरे द्वारा भी अच्छी अच्छी सेवाएं हो सकती है, और ये सबको पता चलना चाहिए। लोग जो समझ रहे हैं ना, हम तो कुछ भी नहीं है, उन्हें भी ये पता चले कि हमने भी ये सेवाएं की। तो ये जो इच्छा है, बाप जाने और तुम जानो, बाबा ने तो कह दिया, बताने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानता है। तो अब नहीं तो कब नहीं, इस भाव से भी जो किए जाने वाले कर्म है कि अभी करना है श्रेष्ठ कर्म, कल नहीं। आलस्य अलबेलेपन से रहित जीव कर्म किए जाते हैं, उमंग उत्साह से जो कर्म किए जाते हैं, उल्लास से जो कर्म किए जाते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म है। दूसरों की पीड़ा हरने वाले जो कर्म है, दूसरों का दर्द समाप्त करने वाले जो कर्म है, दूसरों की उदासी दूर करने वाले जो कर्म है, वो श्रेष्ठ कर्म है। और इसके विपरीत सारे विकर्म है। फिर बाबा कहते हैं, जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है, तो सब में डबल, किस किस में डबल, डबल पुरुषार्थ, डबल सेवा, विश्व कल्याणकारी अर्थात डबल सेवा, सिंगल सेवा नहीं, संडे की मुरली था ना, सेवा करते हुए मन से शक्तियों का दान होते रहे, सेवा करते हुए गुणमूर्त होकर सेवा करो, सेवा करते हुए श्रेष्ठ स्थिति हो। डबल किस में, सेवा में, डबल पुरुषार्थ में, और खुशी डबल, कौन सी डबल, आंतरिक और बहिरंग और अंतरंग खुशी, दो खुशियों का गायन है, बहिरंग खुशी अंतरंग खुशी, वो ट्रिपल हो गया, डबल ताज, डबल ताज, ताज डबल पवित्रता, डबल ताज और डबल, और तिलक डबल कौन सा, एक बार विजय का और स्मृति का और सम्मान का और विश्व कल्याणकारी का, तो चार हो गए, तो चार पांच हो गए, टू टाइम्स डबल और डबल डबल स्मृति, डबल डबल स्वरूप, अभी डबल स्वरूप और डबल
डबल पुरुषार्थ,
हाँ पुरुषार्थ, नशा
डबल, नशा डबल,
स्थूल में भी लौकिक और अलौकिक दोनों की सेवा है, डबल सेवा, डबल ड्यूटी, डबल टाइम ड्यूटी, जितना ड्यूटी है उससे डबल, डबल योग, डबल ज्ञान, बाबा को डबल, डबल इंजन, बाबा को डबल शब्द बहुत पसंद है, सदा शब्द बहुत पसंद है, स्वरूप और मूर्त, ये चार शब्द बाबा के बहुत फेवरेट है, हाँ सदा डबल स्वरूप मूर्त, हर चीज में स्वरूप बनो, हर चीज में मूर्त, हर चीज में डबल और हर चीज में सदा, पर एक चीज है जिसमें डबल नहीं बनना है, सब में डबल हो, सेवा में भी डबल और रहते भी डबल हो, कंबाइंड, सिंगल नहीं, कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता, अभी इसमें डबल मत ये एक है जिसमें डबल, सारा डबल होना, पर ये एक छोड़ के इसमें इसमें सिंगल, बाबा कुमारों को कहते हैं डबल हो, युगल हो जाओ, और युगलों को कहते हैं सिंगल हो जाओ, ऐसा उल्टा हिसाब है, इधर युगलों को कहते हैं सिंगल और कुमारों को कहते हैं डबल हो जाओ, पर ये डबल मत होना। हाँ कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए, कौन चाहिए, साथी या साथ चाहिए तो बता दो, अभी बता दो मैट्रिमोनियल वेबसाइट, ऐसा नहीं करना कि वहां जाकर कहो कंपेनियन चाहिए, विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं, उनको कंपेनियन चाहिए रहता है, अच्छा लगता है उनको घूमना साथ साथ, कितने भी कंपेनियन करो, चैलेंज है बाबा का, चुनौती, कैसी चुनौती फेंकी है, लेकिन ऐसा कंपेनियन, अपनी तरफ इशारा ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। आगे और एक चुनौती है, कितने भी अच्छे कंपेनियन हो, लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अभी उससे भी बड़ा एक चैलेंज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, मिलता है? जहां ढूंढना है ढूंढो, मेरे जैसा कंपेनियन तुमको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने, लेकिन देते देते लेंगे जरूर, थोड़ा थोड़ा तो मांगेंगे, प्यास, सहानुभूति, केयर, कुछ तो चाहिए उनको। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहां भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा, कहां भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। यहां से अगर कहां जाने की बात चल रही है, कहां भी जाओ इधर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं है, पूछ रहे हैं, कोई कमजोर तो नहीं है? फोटो निकल रहा है, फिर आपको फोटो भेजेंगे कि आपने कहा था, कहो यह होना ही नहीं है, मतलब जाना। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेले रह नहीं सकते, शुद्ध मोह। तो ये कंपेनियन और उस कंपेनियन में क्या अंतर है? अच्छा, वो ये दिखाई नहीं देता है, ये अदृश्य है, वो दृश्यमान है। एक और ये अविनाशी, वो विनाशी, ये जन्म जन्म का है, ये सदा है, सतयुग में है, जन्म जन्म का साथ इसका है, उनका जन्म, इनका एक एक जन्म का या सात जन्म वो साथी क्या
ये दुख
वो दुख दे सकता है, वो ये क्या
वो दुख देने वाले, दुख लेने वाला,
ये लेने वाला वो देने वाले दुख, और ये निस्वार्थ है, ये देता ही रहता है, ये दाता है, वो लेते ही रहते हैं,
ये फरमाइश पूरी करने वाला है, वो फरमाइश करने
वाला है, वो अरमान कर, तो उनकी बहुत सारी फरमाइशें होती है जो कभी हम पूरा नहीं कर सकते। और वो एक ही सत्य है, साथी, कंपेनियन, वो कंपेनियन और ये कंपेनियन, ये सदा साथ निभाने वाला है, दुख में भी साथ निभाने वाला है, सुख में भी साथ तो है ही है। और ये कभी नाराज नहीं होता है, ये कभी रूठता नहीं है, इसकी इच्छाएं कम है, इसको मनाना नहीं पड़ता बार बार। वो साथी तो बार बार रूठते हैं, बार बार उनको मनाना पड़ता है, कभी वो छोड़ के चले जाते हैं, डाइवोर्स बोला है, चतुर भी बहुत है, और गुस्सा होता है, हो भी जाए तो संभावना, और बस इतना ही। ये प्यार बहुत करने वाला है, अति प्यार करने वाला है, वो कभी प्यार करेंगे तो कभी नफरत, इसके प्यार में कभी अंतर नहीं पड़ता है। वो हद में फंसाने वाले, किसने फंसा? हद के, ये हद से छुड़ाने वाला है, वो हद में फंसाने वाला है, वो बंधन का कारण है, वो जो भी संबंधी है संसार के सभी बंधन है, यहाँ के कर्म संबंधी, कर्मों से ये जो भी संबंध है सब बंधन है, ये बंधनों से मुक्त करने वाला है, ये हसीन मुसाफिर है, ये रास्ता बताने वाला है, और इसमें कभी जेलसी नहीं होती है, ये जो है ये कभी संशय नहीं करता, शक नहीं करता। उधर पति पत्नी एक दूसरे पे बार बार शक करते रहते हैं, थोड़ा सा भी कोई लेट या कुछ भी हुआ तो वो शक तो करेगा, ये शक करता है या वो सबसे जितने मैरिजेस में आजकल जो विभक्त डाइवोर्स जो हो जाते हैं उसका एक कारण तो यही रहता है, शक। ये पॉजिटिव नहीं है, नहीं है पूरी तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव है। बस मुझे ही याद करो, बस मेरा ही नाम, बस मन बना भव, बस ये अपने समान बनाने वाला है और वो एक दूसरों के समान बनाने वाला है। जो भी कपल्स होते हैं, एक स्टडी की गई है विदेश में, वो कहा गया कि 40-50 साल के बाद पति पत्नी एक समान दिखने लगते हैं थोड़े थोड़े। ऐसी स्टडी है एक बहुत अच्छी स्टडी है कि पति और पत्नी आप एक समान दिखने लगते हैं चेहरे से भी, तो वो आप समान बनाने वाले, ये बाप समान बनाने वाला है। फिर लास्ट में एक छोटा इधर ग्रुप है, क्रिसमस या बड़े दिन की मुबारक, ये है 23 दिसंबर की मुरली, 25 को दिसंबर है। क्रिसमस मना लिया कि अभी मनाएंगे, क्रिसमस का अर्थ ही है फादर द्वारा गिफ्ट लेना, वो क्रिसमस फादर है और यह किशमिश फादर गॉड फादर है। तो क्रिसमस फादर क्या देता है, छोटे छोटी 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 गिफ्ट देता है, सेंटा क्लॉज, सेंट निकोलस जिसको कहते हैं। और गॉड फादर क्या गिफ्ट देता है, जन्म जन्म के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अधिकारी बना देता है, स्वर्ग हाथ में दे देता है। स्वर्ग आपके हाथ में है, यह आपका चित्र है या सिर्फ ब्रह्मा बाप का चित्र है, हम सभी का, क्योंकि चित्र में तो एक ही दिखाया जाता है लेकिन अधिकारी सभी बनते हैं। यह नशा है, यह बड़ा दिन कहकर मनाते हैं, लेकिन आपका हर घड़ी बड़ी घड़ी हो गई है। क्रिसमस को बड़ा दिन कहा जाता है, उसके पीछे और भी बहुत सारे ऐतिहासिक कारण भी है, कुछ और अलग प्रकार के कारण है इसके पीछे। जब ब्रिटिश भारत में आए तो उनको यहाँ पर हुकूमत करनी थी, तो जिस देश पर राज्य करना होता है वहां की सभ्यता वहां की संस्कृति उसको नष्ट करना होता है, या फिर अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता अपनी भाषा उस देश में लादनी होती है, अपने त्योहार, तो उन्होंने अपने क्रिसमस को इस देश में उन्हें डालना था। तो भारत के लोग बड़ा दिन छोटा दिन इस सब को मानते हैं ना, तो उन्होंने कहा ये हमारा बड़ा दिन है, तो तुरंत स्वीकार कर लेते भारतीय। इस तरह की बात है, ये भी एक कारण रहा है कि इसको बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि एक सेकंड में कितनी कमाई करते हो तो बड़ी हो गई ना। और क्रिसमस की निशानी क्या दिखाते हैं, एक तो सांता क्लॉज, दूसरा क्रिसमस ट्री, तीसरा सितारे चमकते हुए, चौथा केक कटिंग। केक के बिना तो क्रिसमस हो ही नहीं सकता, केक चाहिए ही चाहिए क्रिसमस में। उपहार देते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं, रात 12 बजे तक जागते हैं उसके पहले दिन, फिर रात को 12 बजे वो सेंटा क्लॉज आता है किसी अज्ञात देश से, कल्पित है ये एक्चुअली, उसका क्रिश्चियनिटी इधर कोई वर्णन नहीं है बाइबल में। वो कहते हैं कहीं वो उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ पोल से आता है और रात में आकर बच्चों को, किसके घर जाता है पर वो भी है, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं बस उन्हीं को गिफ्ट देता है, वो सबको नहीं देता है। ऐसे कहते जो अच्छे बच्चे हैं उनके पास में टॉफी चॉकलेट गिफ्ट्स छोड़कर चला जाता है। वो ऐसा मोटा आदमी एक दिखाते हैं जिसकी सफेद दाढ़ी है, सफेद कॉलर है और लाल कोट है, एक बेल्ट है और बड़ी टोपी है उसकी, और बड़ा हसमुख रहता है वो, जैसे हमारे बख्शी भाई हमेशा बनते हैं कोई प्रोग्राम हॉस्पिटल के, सांता क्लॉज बनते हैं, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। चर्च को सजाया जाता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, झांकी बनाई जाती है, शिशु जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है ना क्रिश्चियनिटी अर्थात क्रिसमस अर्थात, तो उसकी झांकी बनाई जाती है, जैसे कृष्ण की झांकी बनाई जाती है वैसे उधर क्राइस्ट की झांकी, क्राइस्ट और कृष्ण में बहुत समानता है, एक ही राशि के है। ये पढ़ता हूँ फिर एक बात बताता हूँ। तो संगम पर आपको भी ट्री का नॉलेज मिला है, आपकी ट्री कितनी बड़ी है, तो आप कहाँ बैठे हो, कल्प ट्री के अंदर बैठे हो, उनका है क्रिसमस ट्री और आप उसके अंदर बैठे हो। ये संगम युग की यादगार एक दिन करके मनाते हैं, तो क्रिसमस की मुबारक मिली या मिलना ही मुबारक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था क्राइस्ट और कृष्ण इसमें बहुत समान राशि है, उनका अगर देखा जाए तो बहुत समानता भी है। क्राइस्ट का जन्म जब हुआ तो कहाँ हुआ, वो तबेले में, क्रिश्चियन का जन्म कहाँ हुआ, कारागृह में। कहाँ हुआ? अंधेरी रात, यहाँ अंधेरी रात। जब क्राइस्ट कृष्ण का जन्म हुआ तो देवकी और वसुदेव को साक्षात्कार हुआ कि वाह रहे, एक दिव्य आत्मा आने वाली है या मैं ही आने वाला हूँ। इधर तीन फरिश्ते आते हैं और कहते हैं, थ्री वाइस मैन, कि परमात्मा का मसीहा आ रहा है। वहां पर कंस का शासन था, यहाँ पर किंग हिरोड का शासन था। जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन सारे बच्चे जितने जन्म हुए सबको मार दिया गया। यहाँ जब क्राइस्ट का जन्म हुआ और वो उधर हिरोड को पता चला कि कोई मसीहा आने वाला है, तो जितने बच्चे जन्म हुए उस दिन भाग गए, वहां से सबको मार दिया गया। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ, उसको यहाँ से गोकुल लेके गया, मथुरा से गोकुल। ये इसका जन्म इधर हुआ, वहां से उसको पता चला रातों रात, या वहां से वो चले गए जोसेफ और मैरी उसको लेके बेथलेम जेरूसलम से। ऐसे दोनों के जन्म में बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी दिखा रही। कोई तो ये कहते हैं कि कृष्ण ही क्राइस्ट बनकर आया है, मतलब भक्ति की कहानी है कि दोनों का राशि सेम है, वही वो बनकर आया है तो सब सेम ही है, वो भी वो सब अवतार है, सब भगवान है। अच्छा, ओम शांति। हाँ, भेड़ दिखाते। आई एम द वाइस शेफर्ड।